मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 20 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपने विषय की शुरुआत करूं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, और बात यह कि आप सब जो मेरा डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं, मेरा लाइफ मैनेजमेंट भी सुन रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आपको अपना फीडबैक नहीं देना है, यानी कि आप मेरे पास ईमेल नहीं लिख सकते। आप ईमेल लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो भी ईमेल लिखेंगे वो मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें बाकायदे पढ़ूंगा, आप जो सजेशन होंगे या जो भी मुझे महत्वपूर्ण बातें लगेंगी उन्हें मैं बाकायदे नोट करता हूं, और फिर मैं उन बातों का इस्तेमाल अपने बाद के डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट में करता हूं। इसीलिए आपके जो ईमेल आएंगे उनकी पूरी सेंटिटी होगी, हम लोगों के लिए उनका पूरा महत्व होगा। तो आप ईमेल लिखने में झिझक न करें, कोताही न बरतें, प्लीज आप अपनी व्यवस्था को ज्यों का त्यों जारी रखें। आपको मालूम है कि हम लोग डाइवर्सिटी पर बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पर, और आज मैं आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि आज मैं जिस पर बात करने जा रहा हूं वह एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको समझने का एक न्यू है, उसको समझने की एक न्यू है, मतलब उसका बेस है। एक बात और कि अब जो मैं आपको बात कहूंगा उसे आप थोड़ा सा एक और तथ्य से जोड़कर देखिएगा, और तथ्य यह कि इससे पहले आपको ध्यान होगा, दो दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो तैयारी होती है, इसकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि आपके भूगोल की तैयारी हो चुकी हो। अगर भूगोल की तैयारी हो जाएगी तो आप मेरी बात को फटाफट समझने लगेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्थिति क्या है, लेकिन आप इसे महसूस कीजिएगा। अगर आपकी भूगोल की तैयारी हो चुकी है तब आप इसे महसूस कीजिए, और जिनकी नहीं हुई है वो भी महसूस करेंगे, और इसके बाद जिनकी नहीं हुई है भूगोल की तैयारी वो इसे महसूस करेंगे। डेफिनेटली हर चीज हम महसूस ही करते हैं, और फिर एक बार वो भूगोल की जब तैयारी कर लेंगे तब फिर वो इसे फिर से सुने। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट भूगोल की तैयारी नहीं कर पाए हैं, बेहतर होगा कि इस लेक्चर को वो अपने पास रिकॉर्ड में रख भी लें, और तैयारी हो जाने के बाद इसे फिर से सुने, तब वे अंतर को समझ सकेंगे, और फिर वो शायद यह भी जान सकेंगे कि वास्तव में जिसे एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कहते हैं, एक साइंटिफिक प्रिपरेशन कहते हैं, वह होती क्या है। और यदि एक यह बात आपके मन में आ गई तो हर विषय के तैयारी के बारे में जो आपका तरीका है वो धीरे धीरे अपने आप बदलता चला जाएगा। तो दोस्तों आइए अब मैं सीधे सीधे अपने विषय पर आऊं, और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं जैव विविधता की प्रवणता पर। प्रवणता है ना, ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, और मैंने जानबूझ करके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो पेपर्स आते हैं उनमें इस तरह की शब्दावलियां प्रयोग में लाई जाती हैं, और आप भी जब अपने उत्तर लिखें तो कम से कम उन शब्दों का तो इस्तेमाल करें ही जो सामान्य तौर पर उस विषय से जुड़े हुए होते हैं। यहां जो प्रवणता है वो इंग्लिश में इसका शब्द है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहां प्रवणता का मतलब होता है, आप ये कह लीजिए कि कैसे कोई भी चीज बढ़ती चली जाती है या घटती चली जाती है ना, या तो वो बढ़ती चली जा रही है या घटती चली जा रही। सामान्य तौर पर जो प्रवणता है उसे हम बढ़ने के सेंस में लेते हैं, बढ़ने के सेंस में, घटने के सेंस में भी यहां ग्रेडियंट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, ज्योग्राफिकली किन किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है और किन क्षेत्रों में कम पाई जाती है, और उसके बड़े वैज्ञानिक कारण है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप रेगिस्तान में जाते हैं, व्यावहारिक स्तर पर सोचने की कोशिश कीजिए, जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में आपको कितने पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वहां आपको कितने जीव जंतु दिखाई देते हैं, होते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो विविधता है वह कम है। इसे ही आप इस बायोडाइवर्सिटी की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वहां जैव विविधता की प्रवणता कम है। लेकिन जब आप एक जंगल में जाते हैं तो जंगल में आपको देखिए इतनी विविधता मिलती है, चाहे वो वृक्षों की हो, वनस्पतियों की हो, जीवों की हो, दुनिया भर की विविधता। लेकिन जंगल भी आपको क्या सब जगह मिलते हैं? फिर तो रेगिस्तान में भी जंगल हो सकते हैं। तो कारण तो है कुछ ना कुछ कि वहां रेगिस्तान क्यों है और यहां जंगल क्यों है। और जंगल भी है तो सब एक जैसे जंगल नहीं है, कोई तो बहुत घने जंगल हैं, कोई सामान्य किस्म के जंगल हैं, कुछ जंगल पेड़ इस तरह के पेड़ पौधे पहाड़ों पर हैं। तो अब आप देखिए कि कल हम लोगों ने जो बात की थी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पर, वो शायद आपके थोड़े से समझ में आए, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है यानी कि हमारा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है ना, तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र है उस तंत्र के अनुकूल ही जैव विविधता आती है। और मैं अपने क्लास स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा कि ज्योग्राफी पर हम लोगों ने बड़े खूबसूरत, बड़े रोचक तरीके से, बड़े विस्तार से बातें की थी, और उसमें हम लोगों ने पूरी दुनिया की जैव विविधता को समझने की कोशिश की थी, और इसके बाद फिर हम लोगों ने भारत की जैव विविधता को समझा था। और केवल उसे हमने जैव विविधता तक ही सीमित नहीं रखा था। आप याद करके देख कोशिश कीजिए याद करने की कि हमने देखा था कि वहां की जो संस्कृति होती है, वहां की जो भाषा होती है, खान पान होता है, यहां तक कि वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो सबका सब इस इकोसिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। याद करने की कोशिश कीजिए, वही बात आपको यहां भी दिखाई देगी। यानी कि अगर कहीं जंगल है तो उसके कारण है, कहीं रेगिस्तान है उसके कारण है, और उसी कारण के अनुकूल वहां जैव विविधता भी है। तो दोस्तों, ये जो ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट के बारे में कुछ बहुत ही, आप कह लीजिए कि बहुत ही साइंटिफिक स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक कथन कहे जा सकते हैं, और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में अगर आप फार्मूला जान लेते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ब्याज कैसे निकाला जाता है, औसत कैसे निकाला जाता है, आपको अगर फार्मूला मालूम हो गया है तो बात खत्म। फिर आंकड़े चाहे जैसे भी हो, आप फार्मूले का इस्तेमाल करके उत्तर दे लेंगे। मुझे लगता है कि ये जो ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी है, अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आप इसको समझ गए तो आप बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, लेकिन उनके उत्तर किताबों में नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताब हो, चाहे कोई भी किताब हो। और ये सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है उसके प्रिपरेशन का सही तरीका भी है, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं चेक करती है कि आपके दिमाग में रटने की कितनी ताकत है, आप उसको कितने दिन तक याद रख सकते हैं। वो केवल ये चेक करना चाहती है कि आपके दिमाग में समझने की कितनी ताकत है, राइट फ्रेंड्स? और हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस में यही करने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं बल्कि हमें पूरा विश्वास है और आत्मसंतोष भी इस बात का है कि हम लोगों ने ये कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि अब ये प्रवणता क्या है। मैं आपको इसका पहले अर्थ बता रहा हूं, जो आपके लिखने की भाषा होनी चाहिए, देखिए उसके आधार पर। प्रायः क्या होता है, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर। अब आप देखिए कि मैंने कहा कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर। अब ये अक्षांश कैसे समझेंगे आप, ये हो गया ज्योग्राफी का हिस्सा। अगर आपने उच्च अक्षांश समझ लिया अच्छे से ज्योग्राफी में, तब तो आप इसे समझ पाएंगे, नहीं तो आप इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। उच्च अक्षांश का मतलब आप लीजिए, उच्चतम अक्षांश हमारा 90 डिग्री है और नीचे हम आते हैं तो 0 डिग्री हो जाता है। तो उच्च अक्षांश से नीचे की ओर, यानी कि हम 90 से 80 70 60 50 40 शून्य की तरफ चल रहे हैं, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर पहला। तथा जब हम पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर, देखिए हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। मान लीजिए कि एक पर्वत है जो 10,000 फीट ऊपर है, तो हम 10,000 फीट से ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, 10,000 फीट, 9,000 फीट, 8,000 फीट, 7,000 फीट, ठीक है। जाने पर, अब आपको मैं रिपीट करके बता रहा हूं और ये आपके पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए, कि प्रायः उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। अब आप देखिए कि जब हम नीचे चले जाते हैं, ऊपर से नीचे नीचे चलते चले जाते हैं, तो जो प्रजातियों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, उसमें फर्क आने लगता है। यहां केवल फर्क की बात उन्होंने कही है, उसमें फर्क आने लगता है। और ये जो फर्क आ रहा है, इसे ही हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता की प्रवणता। सब एक जैसा नहीं रह गया ना, उसमें कमी हो रही है या अधिक हो रही है, कमी हो रही है अधिक हो रही है, इसके लिए हम आगे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है। और डेफिनेटली अगर ज्योग्राफी आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो ये मान करके चलिए कि अभी जो मैंने आपको परिभाषा बताई है जैव विविधता की प्रवणता की, उसे आप समझ चुके होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि शायद अभी आपकी इतनी स्थिति न बनी हो कि आप इसे एक्सप्लेन कर सकें, व्याख्या कर सकें, इसके बारे में दूसरे को समझा सकें, लेकिन काफी कुछ पकड़ आपकी इस पर बन गई है। आपको ये बहुत ही अजनबी सा स्टेटमेंट नहीं लग रहा होगा कि यार ऐसा क्या हो गया, इसमें तो कुछ नहीं बताया गया है। तो ऐसा होता यह है कि आप उसे रटने में लग जाते हैं। दोस्तों, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैं बीच बीच में इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि इसके जरिए मुझे आपको सक्षम बनाना है। टॉपिक बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, सच पूछे तो टॉपिक के माध्यम से आपको सक्षम बनाना मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरा इस बारे में बहुत लंबा अनुभव रहा है, ये जो मेरा अनुभव है बड़ा कंटिन्यूअस अनुभव है, ऐसा नहीं कि बीच में इसमें कोई मैंने गैप आने दिया हो। और सच बात यह है कि ये जो फील्ड है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, दिमाग के भी बहुत करीब है, तो इसलिए मैं आपको वो बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसे आप एक प्रकार से सिविल सर्विस प्रिपरेशन का मंत्र कह सकते हैं। और ये एक ऐसा मंत्र है, सच पूछे तो इसके बिना गुजारा भी नहीं है। तो आप मेरी बातों को थोड़ा सा इसी तरह से लेने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेहतर होगा कि अब जो हमने ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन इस एपिसोड में जानी है, अब उसकी व्याख्या नेक्स्ट एपिसोड में जाने, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि उसे हम यहाँ पूरी तरह से व्याख्यायित कर सकेंगे। तो फिलहाल मैं यहीं इस आज के डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।